ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली सरकार ने आज मौजूदा ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक विकल्पों में बदलने की मंजूरी दी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का चार दिवसीय कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में नदी उत्सव के पांचवें संस्करण की शुरुआत हुई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कल से हरियाणा में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज रोहतक में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और उत्तर रेलवे के स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज राजधानी में वॉकथॉन का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली सरकार ने आज मौजूदा ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक विकल्पों में बदलने की मंजूरी दे दी है। ग्रामीण सेवा वाहनों के मालिक आधार और पंजीकरण आईडी का उपयोग करके अपने पुराने वाहन को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पुराने ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना प्रदूषण कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का चार दिवसीय कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे कई देशों की भागीदारी पर कहा कि ये दुनिया के साथ काम करने का एक आदर्श मंच है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस मंच पर खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों जैसे व्यापक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अधिक जानकारी के साथ हैं हमारे संवाददाता।
वर्ल्ड फूड इंडिया में 90 से अधिक देश, 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और 18 केंद्रीय मंत्रालय हिस्सा ले रहे हैं। जापान इसका भागीदार देश है, जबकि वियतनाम और ईरान पर विशेष ध्यान केंद्रित रहेगा। इस कार्यक्रम का लक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी के प्रयासों में समन्वय करना है। वर्ल्ड फूड इंडिया में पंजाब से आई मनदीप ने आकाशवाणी समाचार से कहा कि एक जिला एक उत्पाद के तहत वे शहद के विभिन्न उत्पादों का इस आयोजन में प्रदर्शन कर रही हैं।
हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड फूड इंडिया एक्शन में पार्ट कर रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके थ्रू हम लोग पंजाब से आए हैं और हमारे पास हनी के बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत सारी मॉडर्न नीड्स के साथ कंपेटेबल हैं। जैसे कि ये स्लिम हनी है। दिस प्रोडक्ट इज मेड फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ये जिंजर कर्क्यूमिन हनी है, ये इम्यूनिटी के लिए है। एंड अभी हमारी न्यू प्रोडक्ट रेंज आई है दैट आई आल्सो वांट टू शो।
छत्तीसगढ़ से आई शेख रजिया ने बताया कि वह अधिकतर प्राकृतिक खाद्य पदार्थों पर काम करती हैं।
हमारा वेंचर का जो नाम है वो है बस्तर फूड फार्म। ये ज्यादा करके आदिवासी जो खान पान है उस पर काम करता है, जैसे महुआ चाय हो गया, महुआ कुकीज हो गया और महुआ लड्डू। ये जो महुआ होता है वो शराब बनाने में यूज किया जाता है, लेकिन हमारी कंपनी ने इसे न्यूट्रिशनल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया और जो आदिवासी इलाके के लोग हैं उन्हें हम लाइवलीहुड दे रहे हैं।
वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण में एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की उभरती भूमिका को उजागर करने का भी एक ऐतिहासिक अवसर है। प्रादेशिक समाचार के लिए अभिषेक कपिल, आकाशवाणी दिल्ली।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य हाइड्रोजन के उपयोग से आने वाले वर्षों में लगभग 22 लाख करोड़ के जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करके लगभग 4 लाख करोड़ करना है। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि सरकार मिराई परियोजना पर तेजी से कार्य कर रही है। मिराई एक कार है जो कचरे से उत्पन्न हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में प्रयोग करती है। उन्होंने ये भी कहा कि जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से सस्ती दर पर हाइड्रोजन का उत्पादन संभव हो सकता है। मंत्रालय ने भारत को ऊर्जा निर्यातक देश बनाने के लिए $1 प्रति किलोग्राम की दर से हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। श्री गडकरी ने राष्ट्र निर्माण में कृषि के महत्व पर बल देते हुए कहा कि हमारे किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि ऊर्जादाता, ईंधनदाता और हाइड्रोजनदाता भी हैं, क्योंकि वे पराली के उपयोग से जैव इथेनॉल उत्पन्न करने में सक्षम हैं। हरियाणा में एक ही चरण में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां कर रहे हैं। कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं। 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कल से हरियाणा में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉ. संदीप पाठक ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि पार्टी हरियाणा में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल यमुनानगर की जगाधरी विधानसभा में अपना पहला रोड शो करेंगे। श्री पाठक ने कहा कि श्री केजरीवाल 11 जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज रोहतक में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सहनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर, प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली समेत कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद थे। पार्टी के घोषणा पत्र में कुल 20 संकल्प शामिल किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली के जनपथ स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज नदी उत्सव के 5वें संस्करण की शुरुआत हुई। विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे इस उत्सव का उद्देश्य देश की नदियों के महत्व को उजागर करना और उनके समृद्ध सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है। इस उत्सव में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
इस 3 दिवसीय नदी उत्सव में प्रदर्शनियों के अलावा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मनाए जा रहे हैं। इनमें रिवर्स इन रिवर्स, मेकिंग ऑफ अ लाइफलाइन के प्रसंग पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ एक वृत्त चित्र फिल्म महोत्सव, बच्चों की कला कार्यशाला और पर्यावरण पुस्तक मेला शामिल है। आज पहले दिन स्कूल के छात्र छात्राओं ने नदियों पर चित्र बनाए, जिन्हें IGNCA के गलियारे में प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके अलावा फोटो प्रदर्शनी भी यहां एक बेहतरीन आकर्षण है। इस प्रदर्शनी के संग्राध्यक्ष प्रकाश सावंत ने आकाशवाणी को बताया कि उनकी चित्रों में बंगाल की कानसबती नदी के जरिए नदी और नदियों के इर्द गिर्द स्थापित कला, संस्कृति और इतिहास को दर्शाया गया है।
ये जो एग्जीबिशन है, ये इस एग्जीबिशन के तहत मैं दिखाना चाहूँ कि व्हाई रिवर इज एसेंशियल फॉर अस, हम रिवर को क्यों संरक्षण करें, उसमें हम लोग का क्या बेनिफिट्स है। तो हम क्या किए, जो रिवर के सराउंडिंग जो आर्ट, कल्चर, रिचुअल्स, हेरिटेज, ट्रेडिशंस जो है, उसको हम इधर एग्जीबिट किया ज्यादातर। तो उनसे क्या होगा, हम लोग इंस्पिरेशन मिलेगा कि ये भी होता है। तो उससे क्या होगा, पब्लिक अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, उसमें पब्लिक भी, टूरिज्म डेवलपमेंट होगा, वो भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है।
आकाशवाणी से बात करते हुए गाजियाबाद से आए अमूल कुमार माहेश्वरी ने बताया कि उन्हें इस महोत्सव में काफी नई चीजें देखने मिली, जिससे लोगों में नदियों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
आज मैं इस एग्जीबिशन में आया हुआ हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि नदियों के प्रति इतनी जागरूकता पैदा की जा रही है, जो अपने आप में एक बहुत ही अनूठा प्रयास है। हम लोग ने बहुत गलतियां की हैं, अपनी नदियों को बहुत बर्बाद कर डाला। इस समय इस बात की बहुत ही महती आवश्यकता है कि हमें, हम सब लोगों को मिलकर, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, सब लोगों को मिलकर इसके लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।
IGNCA ने बताया कि यह महोत्सव भारत की नदियों के प्रति एक छोटा सा आभार है, जिसका मूल उद्देश्य नदी संरक्षण से संबंधित चुनौतियों और अवसरों के बारे में संवाद तथा रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। कला केंद्र ने आशा जताई कि नदी उत्सव के द्वारा जनता में नदियों और नदी संस्कृति के महत्व के बारे में संवेदनशीलता बढ़ेगी। नदी उत्सव 21 सितंबर तक चलेगा। इसमें प्रवेश सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा, जो पूर्ण रूप से निशुल्क है। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श, आकाशवाणी दिल्ली।
उत्तर रेलवे का स्वच्छता ही सेवा अभियान जारी है, जिसकी थीम स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता है। अभियान के तहत आज नई दिल्ली में वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। वहीं एक मानव श्रृंखला भी बनाई गई, जिसमें रेलवे बोर्ड और उत्तर रेलवे के करीब 500 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज आरोप लगाया कि राजधानी के कई इलाकों में गंदगी दिल्ली सरकार की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रशासनिक लापरवाही के कारण पश्चिमी दिल्ली के लाखों लोग बेहद खराब स्थिति में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने आज केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अनुसार सड़कों के कार्यात्मक और संरचनात्मक मूल्यांकन, निर्माण गुणवत्ता पर्यवेक्षण और इंजीनियरों तथा स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए आज कहा कि श्री केजरीवाल को यह घोषणा करनी चाहिए थी कि जब तक वे अदालत से बरी नहीं हो जाते तब तक वे मुख्यमंत्री का पद नहीं संभालेंगे। श्री बिधूड़ी ने कहा कि श्री केजरीवाल की पार्टी उन्हें त्याग की मूर्ति कह रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने क्या त्याग किया है। राहुल गांधी के द्वारा अमेरिका में दिए गए जन विरोधी बयानों के विरुद्ध दिल्ली भाजपा ने आज 3 पुलिस शिकायतें दर्ज कराई। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेसवार्ता में आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर हैं, लेकिन देश हो या विदेश उनके बयान सामाजिक वैमनस्य से बिगाड़ने वाले होते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता देश की प्रगति के लिए परिवर्तनकारी शक्ति है। आज नई दिल्ली में एआई इंडिया कॉन्क्लेव 2024 को संबोधित करते हुए श्री सूद ने कहा कि यह सुनिश्चित करना उद्योग जगत की सामूहिक जिम्मेदारी है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग उचित कार्यों के लिए किया जाए। एक रिपोर्ट।
श्री सूद ने देश के विकास के लिए सभी से एआई क्रांति में शामिल होने का भी आग्रह किया। कॉन्क्लेव का विषय विकसित भारत के लिए एआई क्रांति को अपनाना है। कार्यक्रम के दौरान श्री सूद ने डिजिटल युग में एआई से उत्पन्न विषय वस्तु की पहचान, वाटर मार्किंग की भूमिका विषय पर भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की एक रिपोर्ट भी जारी की। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
केंद्र सरकार कृषि अनुसंधान और तकनीक पर अगले महीने से कृषि चौपाल नाम से रेडियो और टीवी कार्यक्रम शुरू करेगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि अनुसंधान और तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में कृषि मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियां बताते हुए इस कार्यक्रम की घोषणा की। श्री चौहान ने कहा कि किसानों से सीधे जुड़कर वैज्ञानिक उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मिलकर विशेष अभियान 4 चला रहा है। यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर के बीच चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत कार्यालय परिसर की स्वच्छता, मामलों को निपटाने, बेहतर स्थानीय प्रबंधन और संचार के विभिन्न माध्यम से जागरूकता फैलाने पर ध्यान दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने सभी मीडिया इकाई प्रमुखों के साथ विशेष अभियान 4 की प्रगति की समीक्षा बैठक की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 3रे कार्यकाल के पहले 100 दिन के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हाल ही में सरकार ने संशोधित प्रधानमंत्री जैव ईंधन जलवायु परिवर्तन अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना को स्वीकृति दी है। इस योजना का उद्देश्य कृषि अवशेषों के लिए किसानों को पारिश्रमिक आय प्रदान करना और पर्यावरण प्रदूषण का समाधान करना है। योजना में संशोधन के साथ उन्नत जैव ईंधन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावों में नई प्रौद्योगिकी और नवाचार को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना से स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा होंगे और भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सुहावना रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने आज मौजूदा ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक विकल्पों में बदलने की मंजूरी दी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का 4 दिवसीय कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में नदी उत्सव के 5वें संस्करण की शुरुआत हुई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कल से हरियाणा में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज रोहतक में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।